नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव होंगे, जबकि पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि असम, केरल और पुदुचेरी में 9 अप्रैल को जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों के लिए और 29 अप्रैल को दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान होगा। निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
आचार संहिता लागू होने से पहले जो भी कदम उठाए गए वे संबंधित सरकार का विशेषाधिकार है, लेकिन अब से आचार संहिता के नियम लागू होंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में निर्वाचन आयोग ने विस्तार से चर्चा की है। इसे पहले 8 चरणों के बजाय अब 2 चरणों में कराया जाएगा। आयोग का मानना है कि चरणों की संख्या को कम करना जरूरी था ताकि यह प्रक्रिया सभी के लिए आसान और सुविधाजनक हो सके।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों की घोषणा की है। आयोग ने बताया कि चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद ये निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की भी घोषणा कर दी है। ये विधानसभा सीटें हैं गोवा में पोंडा, गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोलडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर। बिहार, ओडिशा और हरियाणा की 11 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। 26 सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए पिछले महीने अधिसूचना जारी की थी। लोकसभा में आज वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा भी सदन की आज की कार्यसूची में है। राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2026 पर विचार होगा। इस विधेयक के द्वारा भुगतान और वित्त वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए संचित निधि से ली गई राशि के विनियोग को अधिकृत किया जाना है। ओडिशा में कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आईसीयू में आज सुबह आग लगने से 10 मरीजों की मौत हो गई। मरीजों को बचाने में अस्पताल के लगभग 11 कर्मचारी भी झुलस गए। आग आज सुबह करीब 3 बजे ट्रॉमा केयर विभाग की पहली मंजिल पर लगी। इसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच आज एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 48 उड़ानों का परिचालन करेंगे। ईरान और इराक का वायु क्षेत्र प्रतिबंधित होने के कारण इन सभी उड़ानों के लिए वैकल्पिक लंबे मार्गों का इस्तेमाल किया जाएगा। कतर एयरवेज ने घोषणा की है कि वह 18 से 28 मार्च तक संशोधित और सीमित संख्या में उड़ानों का परिचालन करेगा। कतर में भारतीय दूतावास ने कहा कि ये एयरलाइन दिल्ली, अहमदाबाद, अमृतसर, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोच्ची, कोझिकोड और मुंबई सहित भारतीय शहरों के लिए उड़ान का परिचालन करेगी। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आज तड़के ड्रोन से हमला हुआ, जिससे ईंधन भंडारण सुविधाओं के पास भीषण आग लग गई। इस हमले को देखते हुए उड़ान संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया। आग पर कुछ ही घंटों में काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि उसके सदस्य देश वैश्विक संकट से निपटने के लिए अपने आपात भंडार से बड़ी मात्रा में तेल जारी करेंगे। एजेंसी ने एक वक्तव्य में कहा कि एशिया और ओशिनिया देश तत्काल तेल जारी करना शुरू करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।